ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानति हरे कृष्णा। इससे पहले हम आज का हमारा प्रवचन शुरू करें, फिर से हम अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। कल भगवान सपने में बोल रहे थे कि यदि अनाउंसमेंट के बाद भी यदि सेलफोन किसी का बजे तो सुनना चाहेंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को दंड के रूप में या नारद मुनि की तरह अनुग्रह के रूप में दान पेटी में 100 रुपए डालना, और यदि 100 रुपए नहीं तो सेलफोन डालना है। तो कृपया कर उसे शांत कर दीजिए ताकि सुखदेव गोस्वामी बोल सकें। तो कल हमने कथा में चर्चा की, भगवान श्री दामोदर जो अब उखल से बंधे हुए और अर्जुन वृक्षों की तरफ देख रहे हैं, और जब वो अर्जुन वृक्षों की तरफ देख रहे हैं तो आज के दिन भगवान श्री दामोदर की दृष्टि कुछ अलग है, साधारण दृष्टि से नहीं देख रहे। हर रोज भी भगवान देखा करते थे इन दो वृक्षों को, इर्द गिर्द दौड़ा करते थे, घुमा करते थे, खेला करते थे, परंतु आज कुछ विशेष। और इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी ने संकेत दिया कि भगवान इन यमल अर्जुन, यमल का अर्थ है दो, यमल अर्जुन वृक्षों को जब देखा, दो अर्जुन वृक्षों को देखा, तो भगवान के अंदर अब उनका प्रभुत्व आ गया, क्योंकि अब भगवान को अपना ऐश्वर्य दिखाना है, तो प्रभुता दिखानी है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री दामोदर को प्रभु उल्लेख कर रहे हैं। और इतने सारे संकेत जब परीक्षित महाराज को मिलते हैं तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछते हैं कि नारद मुनि जैसे सज्जन व्यक्ति, इनके अंदर क्रोध कैसे आ सकता है? कौन हो सकते हैं जो नारद मुनि में क्रोध उत्पन्न कर सके? एक सुंदर श्लोक में कहा गया है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। इस सुंदर श्लोक में कहा गया है कि यदि वंदना होनी है इन दोनों व्यक्ति की, एक दुर्जन है एक सज्जन है, तो पहले वंदना किसकी कर लेनी चाहिए? दुर्जनम प्रथमम वंदे, दुर्जन की वंदना पहले कर लेनी चाहिए सज्जन व्यक्ति से। और सुंदर उदाहरण दिया गया है कि कैसे दुर्जन व्यक्ति की वंदना पहले हो जानी चाहिए, क्यों और उदाहरण क्या है। मुख प्रक्षालनत पूर्वम पाद प्रक्षालनम यथा, कि मुख प्रक्षालन करने से पहले पाद प्रक्षालन किया जाता है। प्रक्षालन का अर्थ है धोना। आजकल तो खैर दोनों भी नहीं होता, परंतु साधारणतः जब भोजन से पहले या हम कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले पाद प्रक्षालन, पैरों को धोया जाता है, और उसके पश्चात फिर मुख को। तो यहां पर पैरों की तुलना दुर्जन से की गई है और मुख की तुलना सज्जन से की गई है। तो क्यों? क्योंकि दुर्जन की यदि वंदना नहीं करोगे तो तुरंत आग बबूले हो जाते हैं दुर्जन व्यक्ति। और सज्जन की यदि वंदना हुई या न हुई वो कभी क्रोधित नहीं होते। तो यही प्रश्न अब परीक्षित महाराज को सता रहा था, तो सुखदेव गोस्वामी ने इस सताने के पीछे आगे की कथा सुनाई। जानबूझकर परीक्षित महाराज को इस प्रकार का प्रश्न पूछने के लिए उकसाया सुखदेव गोस्वामी ने, और अब उन्होंने आगे कहा कि ये दोनों धनद आत्मजो कुबेर के पुत्र रुद्रस्य अनुचरो कैलाश उपवने मंदाकिनी गंगा अंत प्रविष्टायाम, परंतु कर क्या रहे थे, अनुगायत भी स्त्री जनैर और मदिरा घूर्णित लोचनों, मदिरा पीतवा, मदिरा पीने के पश्चात इस प्रकार का कार्य वो कर रहे थे नग्न अवस्था में। तो नारद मुनि वहां पर पहुंचे, और नारद मुनि जब वहां पर पहुंचे तो स्त्रियों ने तो अपने आप को संभाल लिया, परंतु ये दो ये अपनी उद्दंडता नारद मुनि के सामने पेश की, तो नारद मुनि ने इन्हें अनुग्रह करते हुए शापित किया। और कल हमने इसकी चर्चा की विस्तार से कि वो कैसे अनुग्रह था। अब अर्जुन वृक्षों के विषय में बताया गया है कि कुछ वर्ष पहले साउथ अफ्रीका में एक शहर है जिसका नाम है डर्बन, या उसे हम हमारी देसी भाषा में कहेंगे दूर बन, बन जो बहुत दूर है। तो वहां पर एक तूफान आया, बहुत भयंकर तूफान था, और वहां पर किसी एक जंगल में जहां पर तूफान आया था जिस प्रांत में, वहां पर अर्जुन वृक्ष थे ये वाले। तो उस तूफान में सब कुछ विध्वंस हो गया, परंतु ये अर्जुन वृक्ष को कुछ नहीं हुआ। इसलिए जो अर्जुन वृक्ष हैं, सभी वृक्षों में बहुत शक्तिशाली विशाल काया के वृक्ष कहे जाते हैं। ये इसलिए हम बता रहे हैं कि इतना आसान नहीं इन अर्जुन वृक्षों को गिराना जो अब दामोदर करने वाले हैं। कितने बड़े तूफान में सब कुछ विध्वंस हो गया, बहकर चला गया, परंतु ये अर्जुन वृक्ष को कुछ नहीं हुआ। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो अर्जुन वृक्ष है, इस अर्जुन वृक्षों की जो छाल है उससे एक दवाई बनती है। यदि हमारे यहां पर कोई आयुर्वेद आचार्य हैं तो इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि एक दवाई बनती है अर्जुन वृक्षों की छाल से, जो कि हृदय रोग के ऊपर काम करती है, हृदय रोग के ऊपर। तो भगवान ने सोचा कि छाल क्यों, पूरा वृक्ष ही उखाड़ देते हैं, क्योंकि आगे कलयुग में इतने लोगों को हृदय रोग होने वाला है और सबका हाल बेहाल होने वाला है, तो छाल से क्या होगा। तो इसलिए अर्जुन वृक्षों के विषय में थोड़ा बहुत ये कुछ कहा गया है। अब देवऋषि नारद जब उन्होंने अपना अनुग्रह इनके ऊपर किया, शाप जब इनको दिया, तो नारद मुनि उसके पश्चात अब सोचने लगे कि अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि यहां पर थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी। जो कुबेर के दोनों पुत्र नारद मुनि जो चाहते थे इनका नशा उतारना, वो उतार दिया था, पूरा नशा उतर गया था, क्योंकि अब पता लगा इन्हें, वो जो स्त्रियां थी वो नारद मुनि को अच्छी से जानती थी, इसलिए वो पहचान गई, वो पहचान गई कि यदि इनके सामने हम इस प्रकार की हरकत करेंगे तो ये भगवान श्री नारायण के निज पार्षद हैं। इसलिए उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, हालांकि वो भी नशे में ही थी, परंतु इनका नशा केवल इतना ही नशा नहीं था। इनका नशा क्यों नहीं उतरा, क्योंकि केवल मदिरा का नशा नहीं था, अभिमान, श्री मद अंधौ, श्रीमद में अंधे ये, इसलिए ये देख नहीं पाए कि कौन यहां पर उपस्थित है। इसलिए अलग अलग प्रकार का अंधापन होता है। शारीरिक रूप से लोग अंधे होते हैं, जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र वो शारीरिक रूप से भी अंधा था और आध्यात्मिक रूप से भी, और वो बहुत बड़ी बीमारी थी आध्यात्मिक रूप से अंधे होने की उसकी। तो कोई पैसों के वजह से अंधा होता है, कोई ऐश्वर्य के वजह से, कोई रूप के वजह से, कोई ज्ञान के वजह से, अलग अलग तरीके से लोग ज्यादातर इस भौतिक संसार में अंधे ही हैं। इसलिए ठीक दिखता नहीं कि ये भौतिक संसार क्या पेश कर रहा है, किस लिए बनाया गया है। इसलिए दोनों नारद मुनि को देख नहीं पाए, पश्यन अपि न पश्यति, सामने नारद मुनि, परंतु नारद मुनि ने सोचा कि नशा यदि उतारना है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर उदाहरण देते हैं कि नारद मुनि उस पिता के समान थे जो अपने पुत्र को उठा रहा है, किस लिए, दवाई देने के लिए, परंतु पुत्र इतनी गहरी नींद में है कि पुत्र उठ ही नहीं रहा। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं तो पिता करता क्या है फिर, उसे एक क्या कहते हैं, चुटकी, पिंच, चिमटा, चिमटा, चिमटी, क्या। तो पिता जब उस प्रकार से उठाता है अपने पुत्र को तो पुत्र गुस्सा होता है, क्यों नींद से उठाया, और वो भी इस प्रकार से, वे ठीक से उठ नहीं रहे थे। तो चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि वो जो थोड़ी सी चुभन पिता देता है, उस प्रकार से नारद मुनि ने जो श्राप दिया वो केवल एक चिमटा था, बस। क्या 100 स्वर्गीय वर्ष तक अर्जुन वृक्ष की तरह खड़े रहना, ये अपने पार्थिव वर्ष नहीं, स्वर्गीय वर्ष, ये नारद मुनि का चिमटा था। क्योंकि उनका नशा इतना गहरा, इसलिए उसे उतारने के लिए थोड़ी गहरी दवाई दी, डोज थोड़ा बड़ा है। तो नारद मुनि अब सोच रहे हैं कि यहां पर मैंने इन्हें शाप दिया है। तो नारद मुनि सोचते हुए, एवं उक्त्वा स देवर्षिर गतो नारायण आश्रमम, इस प्रकार से नारद मुनि सोचते हुए नारायण आश्रम की तरफ निकले। कहां है नारायण आश्रम, कहां, किधर, श्रीलंका, क्षीर सागर, नहीं नहीं, बद्रिका आश्रम। नारायण आश्रम का अर्थ है बद्रिका आश्रम। उस समय वहां पर नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और नर नारायण ऋषि कौन है, कृष्ण अर्जुन। तो कृष्ण अर्जुन बद्रिका आश्रम में वहां पर तपस्या में हैं। तो नारद मुनि ने सोचा, दो कारण नारद मुनि के वहां जाने के, एक तो जो श्राप दिया उस सर्टिफाई करने के लिए, वहां से सर्टिफिकेट साइन करा के लाने के लिए कि ठीक किया कि नहीं मैंने, तो कंफर्म करने के लिए, भगवान श्री नारायण से कंफर्म करने के लिए वो वहां पर गए, क्योंकि सबसे निकट भगवान का अवतार वहीं पर था, इसलिए वहां पर गए कैलाश से बद्रिका आश्रम। और नारद मुनि को कोई फ्लाइट बुकिंग या ये सब की जरूरत नहीं है, वो उड़ सकते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम, जैसे वो अपनी वीणा बजाते हैं तो सब जगह पर वो ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेसमैन बोलते हैं उनको, ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। तो एक कारण है कि वो कंफर्म करने गए थे कि जो श्राप दिया वो ठीक दिया कि नहीं, अनुग्रह जो किया वो ठीक किया कि नहीं, क्योंकि आगे चलकर इनको ही उद्धार करना है इन दोनों का। तो नारद मुनि तो बोलकर आ गए, पता नहीं कल फिर नारायण बुलाए कि भाई पूछा था क्या, किससे पूछकर उनको बना दिया उधर दो वृक्ष। तो नारद मुनि उस दृष्टिकोण से गए, और नारद मुनि ये भी सोच रहे थे कि क्योंकि मैंने क्रोधवश, हालांकि नारद मुनि का क्रोध कोई रजोगुण तमोगुण का नहीं है, परंतु फिर भी वो सोच रहे थे कि क्योंकि क्रोधवश मैंने इन्हें श्राप दे दिया, तो मुझे जाकर थोड़ी तपस्या करनी चाहिए ताकि मैं उसका पश्चाताप कर सकूं। ये नम्रता नारद मुनि की कि बद्रिका आश्रम जाकर थोड़ी तपस्या करता हूं ताकि जो कुछ मैंने क्रोध में कह दिया, श्राप दे दिया, उसका पश्चाताप हो। तो यहां पर नारद मुनि सिखा रहे हैं कि भक्तों को कितना सावधान होना चाहिए। यहां पर तो नारद मुनि ने जो किया वो सही किया, अनुग्रह था उनका और उन्हें बचाया, दुर्गति से बचाया, सदगति भी नहीं, सदगति से भी ऊपर विमुक्ति, इसका टिकट दे दिया इन दोनों को। परंतु फिर भी नारद मुनि वो अपने आप को दोषी मान रहे हैं। तो सोचिए, हम जब भक्तों के समुदाय में जब कटु शब्द निकलते हैं या क्रोध अवस्था में कुछ व्यवहार ऐसा हो जाता है कि अगला व्यक्ति उसे बहुत चुभ जाता है, तो इसलिए यहां पर नारद मुनि सिखा रहे हैं कि हमें कुछ तपस्या अधिक करनी चाहिए उसके पश्चाताप के लिए, उसका निवारण करने के लिए। तो नारद मुनि ये दो कारणों के वजह से नारायण आश्रम, बद्रिका आश्रम गए। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री दामोदर, भगवान श्री दामोदर की तरफ फिर से अब कैमरा ले जा रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए कैमरा कैलाश के उपवन में ले गए थे, अब फिर से कैमरा आ गया है नंद भवन में, भगवान श्री दामोदर जो अब तक बंधे हुए हैं, शायद पता नहीं आज भी खुलेंगे कि नहीं, प्रयास करेंगे हम, परंतु यदि आज नहीं खुल पाए तो हमें एक और अवसर मिलेगा दामोदर अष्टकम गाने का। तो क्या चाहते हैं आप, क्या अर्थ हुआ इसका, खोलकर गाएं दामोदर अष्टकम। अच्छा ठीक है, प्रयास करते हैं। तो अब भगवान उखल से बंधे हुए, भगवान अपने मन में क्या सोच रहे हैं, अर्जुन वृक्षों की तरफ देख रहे हैं। केवल वहां तक सुनाया था कि अर्जुन वृक्षों की तरफ देख रहे थे भगवान, अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अर्जुन वृक्षों की तरफ देखते हुए भगवान ने अब क्या सोचा। तो ये भगवान अपने मन में श्लोक बोल रहे हैं। सोचिए, सुखदेव गोस्वामी भगवान के मन में कौन सा श्लोक चल रहा है वो सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। ये हैं सुखदेव गोस्वामी। यदि हमारे सामने कोई प्रवक्ता बैठ जाए केवल, कुछ न बोले, तो क्या हमें समझ में आएगा क्या श्लोक सुना है? बताने के बाद भी समझ में नहीं कि क्या श्लोक था। यदि पूछ लिया जाए कि ये गीता के 19वें अध्याय का पहला श्लोक, तो कहे अच्छा 19वां अध्याय। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कितने प्रगत भक्त हैं देखिए, वो कहते हैं देवर्षि में प्रियतमो यद इमो धनदात्मजो तत्तथा साधयिष्यामि यद गीतम तान महात्मना। भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री दामोदर, देवर्षि में प्रियतमो, देवर्षि नारद, में अर्थात मेरे प्रियतमो, मेरे प्रियतम देवर्षि नारद जिन्होंने धनत आत्मजौ के ऊपर अपना अनुग्रह किया, तो भगवान नारद मुनि को सोचते हुए कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रियतमो, कि वो नारद मुनि जो मेरे प्रियतम हैं। सोचिए नारद मुनि का स्तर देखिए यहां पर। और इसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। तो नारद मुनि के स्तर को जानने से पहले हम इस श्लोक में यह जान सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं। हालांकि सुखदेव गोस्वामी कोई कम भक्त नहीं भगवान के, वो स्वयं शुक हैं, आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन के भगवान राधा और कृष्ण के शुक, वो तोते, तो वो कोई कम नहीं है भगवान की प्रियतम के लिस्ट में। अक्सर जब कोई दो व्यक्ति एक ही प्रकार के ऑफिस में, कार्य में, या ट्रेड में, या बिजनेस में, या मार्केट में रहते हैं, तो उन दोनों के अंदर स्पर्धा ज्यादा होती है। अब यदि कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसे किसी बिजनेसमैन से इतनी स्पर्धा नहीं होगी, परंतु दो बिजनेसमैन व्यापारी वो अपने में ज्यादा स्पर्धा करेंगे। और यदि एक ही बिजनेस है तब तो पूछो मत, तब तो स्पर्धा कितनी होती, स्पर्धा फिर असूया, असूया का अर्थ है ईर्ष्या, द्वेष। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी भी इतने प्रगत भगवान के पार्षद, नारद मुनि भी, तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से नारद मुनि का गुणगान परीक्षित महाराज को सुनाना, अर्थात ये दिखता है कि सुखदेव गोस्वामी के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, इसलिए वो गुणगान कर रहे हैं। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी हमें सिखा रहे हैं कि हमारी भक्ति की प्रगति को कैसे हम परखें। जैसे बुखार किसको हुआ है तो थर्मामीटर होता है ना परखने के लिए, हर चीज परखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज अ बैरोमीटर ऑफ अवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये बैरोमीटर भी एक प्रकार का उपकरण है। तो एक उदाहरण दिया गया, उसी प्रकार से कौन सा उपकरण है जिसके द्वारा हम ये पहचान सकते हैं कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं कि नहीं। सुखदेव गोस्वामी सिखा रहे हैं कि जब तक हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या, असूया है किसी भी जीव के प्रति, भक्तों के प्रति तो भूल जाइए, किसी भी जीव के प्रति यदि ईर्ष्या द्वेष है तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही, उल्टा दुर्गति के पथ पर है। जैसे कि श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में बहुत ही सुंदर वर्णन है आध्यात्मिक संसार का, और इस सुंदर वर्णन में आध्यात्मिक संसार के गोलोक वृंदावन का सुंदर वर्णन, जहां पर इतने सुंदर तरीके से कपिल मुनि बताते हैं कि जहां पर इतने सुंदर उपवन हैं, सरोवर हैं, कमल के पुष्प हैं, भगवान श्री राधा और कृष्ण विहार करते हैं, जैसे यहां पर हम देखते हैं इतना सुंदर ये चित्र है आध्यात्मिक संसार का, तो उसी प्रकार से ये विवरण दिया गया है। और इस वर्णन में बताया गया है कि भगवान श्री राधा और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वृंदावन के सभी जो प्राणी हैं वो एकत्रित होकर मानो एक प्रकार का ऑर्केस्ट्रा वो प्ले करते हैं, मयूर, सब प्रकार के तोते, सब प्रकार के पंछी, चिड़ियां, ये सभी अपने अपने मधुर स्वर, अंग्रेजी में जिसे कहेंगे सिंफनी, सिंक्रोनाइज्ड, एकदम सुमधुर तरीके से अपना अपना ताल और मेल सुर और ताल को मिलाते हुए, और उनका एकमात्र उद्देश्य है राधा और कृष्ण के कर्णों को संतुष्ट करना, बस। तो जब मयूर कुछ बोलता है तो बाकी पंछी मयूर की आवाज ठीक से सुनाई दे इसलिए वो अपनी आवाज कम कर देते हैं, और जब बाकी पंछी वो अपनी आवाज थोड़ा बढ़ाते हैं तो बाकी पंछी जैसे मयूर इत्यादि वो अपनी आवाज थोड़ा कम कर देते ताकि अब भगवान को थोड़ा वैरायटी मिले, चैनल चेंज हो। अच्छा, इस वर्णन में अब बताया गया है कि अक्सर भगवान इन पंछियों की आवाज और मयूरों की आवाज तो बहुत सुनते हैं, परंतु जब भंवरा बोलना शुरू करता है, जब भंवरे की गुंजन शुरू होती है तो भगवान को भंवरे की गुंजन बहुत मधुर लगती है। तो तीसरे स्कंद में बताया गया है कि जैसे ही भंवरा, अब देखिए भंवरे की गुंजन को इतनी मधुर हमें तो नहीं लगती होगी कि क्या जब भंवरा गुंजन करने लगता है तो क्या हम जाकर उसके निकट सुनते हैं, दूर भागते हैं उसको देखकर, यह हमारा हाल है। परंतु भगवान को बहुत मधुर लगती है भंवरे की आवाज, और सभी मयूर और अन्य पक्षी वो जानते हैं कि जैसे ही भंवरा बोलना शुरू करता है तो भगवान एकटक होकर सुनते हैं इस भंवरे को। इसलिए जैसे ही भंवरा बोलना शुरू करता है तो सब चुप, केवल भंवरे की ही आवाज आती है, सब चुप हो जाते हैं, और सब ने पहले से पूर्व निर्धारित कर रखा है। सब ऐसा नहीं कि जा जाकर सबको तीन बार अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि बंद करो अब, फिर भी नहीं बंद होते। जो जहां कहीं पर भी हो, जैसे ही भंवरा बोलना शुरू करता है सभी चुप। इसे कहते हैं अनसूया, कोई ईर्ष्या नहीं। ये नहीं कि ये क्या है, एक तो काला, इसी कोई आवाज है। तो मयूर यदि कहे यार तुम चुप करो यार, मेरे सुनने दो, मुझे ऊपर माथे, मेरे पंख को माथे पर रखते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं। तो यदि मयूर इस प्रकार से कहे, तोता कहे कि अरे भाई मैं तो हर समय इनके निकुंजों में रहता हूं, और भी कोई पंछी यदि कहने लगे कि मैं ज्यादा निकट हूं भगवान के, नहीं, वो सब जानते हैं, कोई ईर्ष्या नहीं, इसलिए वो वैकुंठ है, कोई कुंठा नहीं वहां पर। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीला, इसमें भी इस महाप्रकाश लीला में सारे पार्षद दूसरों के उद्धार के विषय में भगवान को बता रहे। भगवान ने पूछा ठीक है जो वरदान मांगना है मांगो, तो सभी भक्त भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, वो दूसरों के उद्धार के लिए मांग रहे थे वरदान कि मेरे पिताजी जप नहीं करते उन्हें भक्त बना दीजिए, मेरा भाई वो भक्ति में रुचि नहीं ले रहा उसे भक्त बना दीजिए, इस भक्त को कृपा दीजिए, उस भक्त को कृपा दीजिए, खुद के लिए कुछ नहीं। तो यहां पर इसे कहते हैं अनुसूया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि मैं ये दिव्य ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि अनुसूयवे, क्योंकि ये अर्जुन तुम्हारे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। ये जो ईर्ष्या है इसके विषय में बताया गया है कि यदि एक विषैला सर्प एक जगह पर है और दूसरे जगह पर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, तो दोनों में ज्यादा विषैला कौन है? वो मनुष्य को ज्यादा विषैला बताया गया है। कहा गया है कि जो सर्प है उसके तो केवल फनों में विष है, परंतु एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के रोम रोम में विष समाया हुआ है। इसलिए जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या अपने मन में रखते हैं समाकर, तो इसकी तुलना की गई है कि जैसे किसी पात्र में किसी ने तेजाब को रखा हुआ है, एसिड। तेजाब का गुण क्या है कि वो जिस पात्र में होता है सबसे पहले उस पात्र को जला देता है। तो वैसे ही जब मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है तो वो अपने मन रूपी पात्र में तेजाब रखने के समान है कि वो उस अगले व्यक्ति को जलाने से पहले अपने मन को जला देगा। इसलिए हमारे सुदामा प्रभु एक बार बता रहे थे, वो कह रहे थे एनवी, एनवी का अर्थ है एनवी, नो वैकेंसी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि जहां पर कोई वैकेंसी नहीं मिलती जिसके अंदर ईर्ष्या है। तो सबसे पहला जो वाक्य है श्लोक का, देवर्षिर में प्रियतमो, भगवान ने नारद मुनि को अपना प्रियतम कहा। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं बिल्कुल कोई ईर्ष्या नहीं रखते हुए, यह सुखदेव गोस्वामी का गुण। अब हम नारद मुनि के गुण देखते, क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं कि वो नारद मुनि जो मेरे प्रियतम, जिन्होंने इन दोनों को श्राप दिया। नारद मुनि का गुण इस प्रकार से हमें समझ में आएगा कि कोई भक्त जब भगवान की भक्ति प्रारंभ करता है तो दो प्रकार की भावनाएं होती हैं भक्ति में, एक भाव को कहते हैं तदीय भाव और दूसरे को कहते हैं मदीय भाव। तदीय भाव का अर्थ है कि हे भगवान मैं आपका हूं, इसे कहते हैं तदीय भाव। परंतु तदीय भाव से ऊंचा है मदीय भाव, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, इसे कहते हैं तदीय, कि मैं आपका तदीय हूं। परंतु मदीय भाव है कि आप मेरे हैं, और ये सब वृंदावन के जो पार्षद हैं माता यशोदा इत्यादि, इन सब का मदीय भाव है। वो ये नहीं बताते कि हे भगवान मैं आपका हूं स्वीकार कीजिए, नहीं, कृष्ण तुम मेरे बच्चे हो खाओ बैठकर, या तो ये खाओ नहीं तो मार खाओ। तो जो मदीय भाव है वो तदीय भाव से ऊंचा होता है। तो ये तो भक्त की तरफ से हो गया, अब यहां पर भगवान बोल रहे हैं मदीय भाव कि नारद मुनि मेरे हैं, देवर्षि में प्रियतमा। सोचिए, हम तो खैर कितना भी ढोल पीट कर कह दें मैं भगवान का हूं भगवान मेरे हैं, परंतु भगवान से जाकर पूछो होगा वो मानते हैं क्या। इसलिए यहां पर बैठे बैठे मैं यदि कहूं भारत के प्रधानमंत्री मेरे मैं उनका, वो मेरे मैं उनका, तो कोई कहेगा थोड़ा उनसे फोन मार लगाकर पूछें कि वो भी आपको जानते भी हैं कि नहीं। तो यहां पर सोचिए भगवान अपने मन में नारद मुनि के विषय में ये सोच रहे हैं, ये मदीय भाव भगवान का नारद मुनि के विषय में, देवर्षि में प्रियतमो। और इसलिए जब इन्होंने इस प्रकार से सोचा भगवान ने नारद मुनि के विषय में, तो श्लोक में कहा गया है तत्तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन महात्मना, कि भगवान ये सोच रहे हैं कि ये नलकुवर और मणिग्रीव से मुझे कोई लेना देना नहीं है, फालतू के लोग मदिरा पीकर नग्न स्थान कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या लेना देना मुझे। तो भगवान सोच रहे हैं क्योंकि नारद मुनि ने अपना अनुग्रह इनके ऊपर किया है, तो नारद मुनि के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए अब मैं ये प्रयास करूंगा इनका उद्धार करने का। हालांकि भगवान को क्या प्रयास करने की आवश्यकता है, भगवान ने कहा कि क्योंकि नारद मुनि के शब्दों को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, जैसे कि भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए अपने दो भक्तों के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए, ब्रह्मा जी और प्रह्लाद महाराज, कि ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था हिरण्यकशिपु को, यहां वहां कहीं पर भी नहीं मरेगा वो, तो वो वरदान को सिद्ध करने के लिए, हम सब जानते हैं क्या क्या वरदान हिरण्यकशिपु ने मांग लिया था, तो उन सब वरदानों को इंटैक्ट रखने के लिए, कि ब्रह्मा जी का नाम न खराब हो, कि मैं यदि ब्रह्मा जी के वरदान का उल्लंघन कर हिरण्यकशिपु को मार दूंगा तो हिरण्यकशिपु सबसे पहले ब्रह्मा जी को गाली देगा। तो सोचिए भगवान श्री नरसिंह देव अब सोच रहे हैं कि मैं कौन सा रूप लेकर आऊं कि ब्रह्मा जी का नाम बना रहे, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का नाम बदनाम न करे। कल को भगवान जाकर ब्रह्मा जी से पहले मिलते ही क्या वरदान दिया, अब देखो क्या कर रहा है तुम्हारे वरदान के वजह से, नहीं, ब्रह्मा जी की रक्षा भगवान इस प्रकार से कर रहे, सत्यम विधातुम निज भृत्य, अपने निज भृत्य के वाक्यों को सत्य करने के लिए। तो नर सिंह, आधे नर आधे सिंह, इस रूप में भगवान एक अलग ही योनि निकाली, 84 लाख योनि में भी नहीं है ये योनि, अलग ही योनि भगवान ने निकाली। इसके विषय में हम बता रहे थे कि अक्सर योनि में, किसी एक योनि में यदि कोई पूरा है तो वो सुंदर दिखता है, यदि पूरा सिंह है तो सुंदर दिखेगा, यदि पूरा मनुष्य है तो वो सुंदर दिखता है। वो जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं द कंप्लीट मैन, है ना, यदि मान लो वो रेमंड्स का है ना शायद, मान लो ये रेमंड्स के एडवर्टाइजमेंट में आधा आदमी और आधा गधा, तो उसे ऊपर से सूट पहना है और नीचे वो गधे को पैंट पहना है, तो कौन खरीदेगा उसको, वो लोग कहेंगे जाओ गधों को भेजो खरीदने के लिए, और जो मनुष्य खरीदेगा वो भी गधा फिर। तो जो आधा अधूरा है वो सुंदर नहीं दिखता, परंतु भगवान जब इस प्रकार के रूप में भी आधे आधे अधूरे रूप में, आधा नर आधा सिंह, उसमें भी भगवान अति अद्भुतम अति सुंदरम, भगवान श्री नरसिंह देव बहुत सुंदर दिख रहे थे प्रह्लाद महाराज को, और प्रह्लाद महाराज हिरण्यकशिपु, सबसे पहले हिरण्यकशिपु निरीक्षण कर रहा है, ये कौन है, ये क्या है, कौन है नहीं क्या है। तो पहले सातवें स्कंद में बताया गया हिरण्यकशिपु स्कैन कर रहा था नरसिंह भगवान का रूप ऊपर से नीचे, कौन क्या है, क्योंकि हिरण्यकशिपु बहुत चिल्ला चिल्ला कर, भगवान श्री नरसिंह देव अवतरित होने से पहले बहुत चिल्ला रहा था हिरण्यकशिपु, कहां है तुम्हारे भगवान, सर्वव्यापी भगवान बताओ, क्या इस खंभे में है, तो बहुत क्रोध अवस्था में जोर जोर से चिल्ला रहा था। और सोचे हिरण्यकशिपु जब चिल्लाएगा तो कोई साधारण उसकी आवाज नहीं थी, और उसके साथ साथ उसके सारे जो राक्षसी पार्षद वो सब भी, हाँ सरदार हम आपके साथ, तो बहुत हो हल्ला हो रहा था। और इतने सारे हो हल्ले में जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो ऐसी गर्जना हुई कि पूरा आकाश मंडल मानो अब नीचे गिरने वाला हो, मानो किसी ने छेद कर दिया आवाज से, शब्द ध्वनि बाण फेंक दिया हो ऊपर और आकाश में छेद कर दिया हो, इतनी जोर से आवाज, जैसे हम बता रहे थे कि जब भंवरा गुंजन करने लगता है तो बाकी सब शांत हो जाते, वैसे जब नरसिंह देव गर्जना करने लगे तो हिरण्यकशिपु शांत, ये आवाज कहां से आई, वो भी मेरे खंभे में से, क्योंकि अपने मुट्ठी से उसने खंभे के ऊपर मारा था, तो उसे समझ में नहीं आया खंभे में तो कोई स्पीकर लगा है नहीं, कहां से आवाज इतनी जोर से आई। तो ब्रह्मा जी के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए और प्रह्लाद महाराज ने कह दिया कि हां वो इस खंभे में है, तो दूसरे भृत्य प्रह्लाद महाराज, यह है भगवान की कृपा कि भगवान सबसे ज्यादा चिंता करते हैं अपने भक्तों के वाक्यों के प्रति। जैसे कि गीता में भगवान ने कहा, कौंते प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जाकर ढोल करताल लेकर मृदंग करताल लेकर तुम जाकर सबको कहो कि मेरा जो भक्त है कभी उसका नाश नहीं होगा, नमे भक्त प्रणश्यति, कभी उसका नाश नहीं होगा। तो मानो अर्जुन पूछे कि मैं क्यों कहूं, आप तो सुना रहे हैं गीता, आप बोलो। तो मानो अर्जुन भगवान से पूछे कि मुझे क्यों बोल रहे हो बोलने के लिए, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर मैं जो व्रत लेता हूं उसे मैं तोड़ देता हूं, इसलिए मेरा रेपुटेशन इतना ठीक नहीं समाज में। और भगवान ये क्यों बोल रहे थे, ये बोलते समय भगवान कृष्ण क्या सोच रहे थे कि भगवान ने प्रण लिया था कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और वो तोड़ने वाले हैं भगवान, क्यों, क्योंकि भीष्म पितामह इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि ठीक है देखते हैं, इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि ये शस्त्र नहीं उठाएंगे, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इनको शस्त्र उठवा कर रहूंगा। तो भगवान जानते थे कि भीष्म पितामह के सामने मैं हारने वाला हूं, इसलिए अर्जुन को कहा तुम जाओ, तुम जाकर सबको कहो, क्योंकि जब तुम्हारा वाक्य तुम बोल दोगे तो तुम्हारा वाक्य मैं कभी असिद्ध नहीं कर पाऊंगा, परंतु यदि मैं कहूंगा तो मैं अपने आप पर गारंटी नहीं दे सकता, परंतु जब मेरा भक्त गारंटी देता है तब दुनिया यहां से वहां हो जाए, आकाश नीचे जमीन ऊपर कुछ भी हो जाए, कौंते प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त जो कह दिया है उसे सिद्ध मैं कर रहूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया को मारो गोली। तो ये भगवान का मनोभाव, इसलिए यहां पर भगवान केवल नारद मुनि के विषय में सोच रहे हैं। एक नारद मुनि के विषय में एक भगवान श्री नारायण और नारद मुनि की एक कथा है कि एक बार भगवान श्री नारायण वो नारद मुनि से पूछते हैं कि नारद मुनि तुम तो सब जगह घूमते रहते हो, तो तुम एक ट्रैवलिंग प्रीचर हो, सब जगह घूमते रहते हो, बताओ सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है। तो नारद मुनि तुरंत पृथ्वी लोक से आए थे तो उन्होंने कहा पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो भगवान श्री नारायण अब नारद मुनि से कहते हैं परंतु पृथ्वी में 75% तो जल है, तो फिर जल पृथ्वी से बड़ा हुआ। तो नारद मुनि सोचे हां वो तो है, जल पृथ्वी से बड़ा। तो भगवान श्री नारायण नारद मुनि से कहते परंतु वो 75% जो जल है सब समुद्रों का, अगस्त्य मुनि ने एक ही घूंट में पी लिया था। एक कथा है, अगस्त्य मुनि ने सब समुद्रों का जल पी लिया था। सोचिए अगस्त्य मुनि। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ, तो अगस्त्य मुनि फिर उस जल से बड़े हुए। तो भगवान श्री नारायण कहते हैं परंतु अगस्त्य मुनि तो केवल एक तारे के रूप में परव्योम में स्थित हैं, अगस्त्य तारा, वो तो एक तारे के रूप में है केवल परव्योम में। परव्योम का अर्थ है आकाश पूरा खम। तो वो आकाश फिर इतना बड़ा हुआ क्योंकि यदि अगस्त्य मुनि केवल एक तारे के रूप में है वहां पर, तो नारद मुनि सोच रहे हैं ये भगवान किस प्रकार का क्विज रखे हैं आज सा। तो नारद मुनि ने कहा तो परव्योम फिर बड़ा हुआ। तो भगवान ने कहा परंतु ये पूरे परव्योम को मेरे चरणों ने केवल दो पग ने नाप लिया था, त्रिविक्रम वामन देव के अवतार में केवल दो पग ने। तो नारद मुनि अब कहे हाँ तो फिर आप ही तो हैं, अरे पहले ही बोल देते, मैं बोल देता आप हैं, इतना घुमा फिरा के कहां ले जा रहे हैं। तो भगवान घुमा फिरा के कहां ले जा रहे थे। भगवान ने कहा तो मेरे चरण सबसे बड़े हुए कि नहीं, अब इन इन सब के विश्लेषण में मेरे चरण सबसे बड़े हुए कि नहीं। तो नारद मुनि ने कहा हाँ तो आपके चरण सबसे बड़े हैं। तो फिर भगवान कहे परंतु मेरे जो चरण हैं वो तुमने अपने हृदय में बसा के रखे हैं, तो कौन बड़ा हुआ। तो नारद मुनि फिर शर्मा गए, नहीं नहीं मैं कैसे बड़ा, हाँ तुम मुझसे भी बड़े, क्योंकि इन सब का विश्लेषण कर यदि मेरे चरण सबसे बड़े हैं और मेरे चरणों को तुम जैसे भक्तों ने अपने हृदय में बांध कर रखा है तो उनका हृदय और वो भक्त मुझसे भी बड़े। बोलो श्रीपाद नारद मुनि की। तो ये नारद मुनि जिनके विषय में भगवान अब उखल से बंधे हुए सोच रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी ये जो श्लोक बहुत ही विशेष श्लोक है क्योंकि भगवान द्वारा कहा गया, एक एक अक्षर एक एक शब्द, सोचिए भगवान यदि कोई श्लोक कहें हमें तो देखना पड़ता है कि आगे का शब्द क्या है, बराबर लिखा है कि नहीं, बराबर उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं। तो सोचिए भगवान का ये श्लोक, आगे भगवान कहते हैं यद गीतम, कि नारद मुनि ने वो अपने आप सोच रहे थे कि क्रोध में मैंने श्राप दिया, तो नारद मुनि के क्रोध के वश दिया गया श्राप को भगवान गीत कह रहे हैं। यद गीतम, कि जो नारद मुनि ने गीत गाया, कौन सा गीत गाया, तुम पेड़ बन जाओ अर्जुन के वृक्ष, ब्रज धाम में वहां पर खड़े रहना 100 स्वर्गीय वर्ष, ये गीत। तो भगवान नारद मुनि के दिए हुए श्राप को गीत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नल कुंवर और मणिग्रीव वो हालांकि गीत गा रहे थे परंतु वो कौन सा, केवल कोई सोसाइटी सॉन्ग जिसे बोलते हैं, सामाजिक गीत, जिसे भगवान जब गीत गाते तो उसे कहते हैं भगवद गीत, भगवद गीता। तो उनके गीत को बंद करने के लिए नारद मुनि ने गीत गाया, ये भगवान बता रहे। और कौन सा गीत, ये गीत जो इन कर्णों के लिए इतना मधुर नहीं था उस समय, श्राप, परंतु उस उन सब के वास्तविक अंततः सदगति के लिए। तो यहां पर यह समझ में आता है कि कई बार भगवान का नाम भगवान का कीर्तन हमारे कर्णों को इतना अच्छा नहीं लगता और बाकी जो सांसारिक गीत है वो कर्णों को बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु ये समझ लेना चाहिए कि भगवान का जो गीत है भगवान का जो कीर्तन है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कि वो हमारे हृदय मन के अंततः सदगति के लिए है। इसलिए भगवान ये देख रहे हैं कि अब ये जो 100 स्वर्गीय वर्ष तक यहां पर खड़े रहे ये दोनों कुबेर के पुत्र, अब समय आ गया है कि अब वो जो गीत नारद मुनि ने 100 स्वर्गीय वर्ष पहले जो गाया था उसकी मधुरता अब इन्हें समझ में आएगी, उस गीत की मधुरता। तो भगवान उसे श्राप नहीं बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी ने अनुग्रह कहा, सुखदेव गोस्वामी से एक कदम आगे भगवान गीत बोल रहे हैं इसे। यद गीतम तद महात्मना। और क्यों नारद मुनि ने इस प्रकार का गीत गाया, क्योंकि वो महान मन वाले महात्मना, जिनका मन बहुत विशाल है, जो नारद मुनि ईर्ष्या से नहीं बोले। इसलिए एक हम सेमिनार दे रहे थे ओवरकमिंग एंगर के ऊपर, तो उसमें एक मुद्दा पेश कर रहे थे कि जो क्रोध होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इश्यू बेस्ड एंगर और एक होता है पर्सन बेस्ड एंगर। इश्यू का अर्थ है किसी मुद्दे को लेकर उस मुद्दे के ऊपर क्रोधित होना, और दूसरा है कि मुद्दा तो साइड में, उस व्यक्ति को लेकर ठोक पीट कर क्रोध निकालना उसके ऊपर, उसे कहते हैं पर्सन बेस्ड एंगर। इसलिए यहां पर नारद मुनि जब अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं तो वो केवल उस व्यक्ति के ऊपर नहीं, यदि व्यक्ति के ऊपर क्रोध व्यक्त किया होता तो ऐसी दशा में छोड़ दिए होते नारद मुनि ताकि वो नरक में जाकर सड़े, नहीं। तो नारद मुनि का जो क्रोध था वो इश्यू के ऊपर था, उस मुद्दे के ऊपर था। उन्होंने जो गलत काम किया, जैसे जीसस क्राइस्ट उन्होंने भी कहा हेट द सिन नॉट द सिनर, कि जो पाप है उसके उसका प्रतिरोध करो, पापी का नहीं। जैसे डॉक्टर भी, जब कोई मरीज जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर मरीज को खत्म नहीं करता, बीमारी खत्म करता है। यदि बेचारा मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे, मरीज कह रहा है कि मुझे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, पेट ठीक नहीं, सर भी दर्द करता है, घुटने भी दर्द कर रहे हैं, इतना सब कुछ, ये लो टिक 20। जैसे एक बार एक व्यक्ति वो एक डॉक्टर से पूछ रहा था कि अस्पताल का रास्ता कैसे है, तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो रास्ता जा रहा है बहुत ट्रैफिक का रास्ता, उन्हें आग बंद कर कर यहां से चलो, हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। तो मानो कोई डॉक्टर यदि इस प्रकार का उपचार करे किसी के ऊपर, उपचार नहीं कहेंगे इसे, तो खत्म हो गया पूरा, न रहेगा बांस, न रहेगा मरीज, न आएगी बीमारी। तो इसलिए यहां पर नारद मुनि को महात्मना कहा है भगवान ने, महान मन वाले नारद मुनि। इसलिए केवल अनुग्रह नहीं, गीत द्वारा अनुग्रह उन्होंने नलकुवर और मणिग्रीव के ऊपर किया। तो ये केवल एक श्लोक जो भगवान के मन में चल रहा है, भगवान अब तक बंधे हुए हैं और अब तीन कारण बताए गए हैं कि भगवान इन तीन कारणों के वजह से नलकुवर और मणिग्रीव का उद्धार किया। सबसे पहला कारण, कल हमने इसकी चर्चा की थी कि भगवान सोच रहे हैं कि माता यशोदा का इतना प्रेम मुझे आज मिला है, तो इस प्रेम को मैं संभाल नहीं पाऊंगा अपने अंदर। तो ये सबसे पहला कारण कि भगवान माता यशोदा से मिला हुआ प्रेम और कृपा इन दोनों के ऊपर बांटना चाहते थे, क्योंकि भगवान ने सोचा कि सबसे ज्यादा जरूरत इन दोनों को है। तो ये पहला कारण भगवान ने इनका उद्धार किया, माता यशोदा का प्रेम और कृपा इनके साथ बांटी। और दूसरा कारण अभी हमने चर्चा की, नारद मुनि ने, शुरू करें फिर से प्रवचन, कि नारद मुनि के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए, यह दूसरा कारण। तीसरा कारण बहुत दिलचस्प है कि भगवान ने बंधे हुए दामोदर इन दोनों वृक्षों को देखते हैं, और कौन से वृक्ष हैं ये? अर्जुन। तो भगवान अर्जुन के विषय में सोचने लगे कि अरे आगे चलकर मैं अर्जुन को गीता सुनाने वाला हूं। तो अर्जुन के विषय में सोचते हुए भगवान इतने भाव विभोर हो गए कि तुरंत इन दोनों वृक्षों का संबंध अर्जुन से किसी ना किसी तरीके से है, इसलिए इनका उद्धार कर देना चाहिए। केवल नाम तो है अर्जुन वृक्ष। तो यहां पर भगवान सिखा रहे हैं कि यदि किसी भक्त और भगवान से संबंधित नाम भी हो तो भी उसका उद्धार हो जाता है। अजामिल ने अपने केवल पुत्र को पुकारा था, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रो पचारितम अजामिलोप्यगाधाम किमुत श्रद्धया घृणन। कि मरते समय अजामिल, जो इतना बड़ा पापी, दिन रात पूरे जीवन भर जिसने पाप किया, वो अजामिल पुत्र उपचारितम, अपने पुत्र को पुकारा उसने, भगवान को नहीं पुकारा, परंतु फिर भी भगवान ने अपने पार्षदों को तुरंत भेजा, वो भी चार चार विष्णु दूतों को भेजा अजामिल की रक्षा करने के लिए। किम उत श्रद्धया, फिर उन भक्तों का क्या कहना जो श्रद्धा से क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनका क्या कहना जो श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं। इसलिए यहां पर भगवान अर्जुन नाम का स्मरण करते सो इनके ऊपर कृपा आ गई। तो ये तीसरा कारण। इसलिए यहां पर बताया गया है कि भगवान के अंदर अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती है। कितनी शक्तियां हैं? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, कोई गिनती नहीं है, काउंट करना शुरू मत करना कितनी शक्तियां हैं भगवान के अंदर। अनगिनत शक्तियां भगवान के अंदर समाविष्ट हैं। परंतु अब ये स्थिति में भगवान उखल से बंधे हुए, यशोदा माई नहीं है, अकेले भगवान इन दोनों अर्जुन वृक्षों की तरफ देख रहे हैं देवऋषि नारद को याद करते हुए। तो भगवान की दो शक्ति में स्पर्धा हुई अंदर। भगवान की शक्तियां भी व्यक्ति हैं। तो भगवान की अनगिनत शक्तियों में से दो शक्ति वो आपस में स्पर्धा करने लगी कि कौन शक्तिशाली है इस समय। एक भगवान की प्रेम शक्ति, जो अब माता यशोदा के साथ वो शक्ति का आदान प्रदान हुआ था, प्रेम की शक्ति, और दूसरी है कृपा शक्ति, जब भगवान दूसरों को अपनी कृपा बांटते हैं। तो भगवान की प्रेम शक्ति और भगवान की कृपा शक्ति में स्पर्धा हुई। और कौन सी शक्ति जीतती है? कृपा शक्ति। भगवान की कृपा शक्ति जीत जाती है। तो यहां पर जब दो अर्जुन वृक्षों को भगवान देखते हैं तो भगवान की कृपा शक्ति प्रेम शक्ति पर विजय प्राप्त करती है। और बताया गया है कि भगवान बंधे हुए हैं सबसे गहरे बंधन में। जैसे अलग अलग बंधन होता है इस संसार का, हालांकि इस संसार का बंधन कुछ नहीं, बताया बहुत कुछ गया इस संसार के बंधन के बारे में। जैसे भगवत गीता में तो भगवान बताते हैं कि कैसे हम अलग अलग जो तत्व हैं उसके बंधन में फंसे हुए हैं, 8 तत्व और 24 तत्व, इन सब के बंधन में ये आत्मा, ये जो जल अग्नि वायु, ये इन सब के बंधन में, इंद्रिय विषय भोग भौतिक संसार के सारे तत्व, उनके बंधन में ये आत्मा बंधा हुआ है। तो ये बहुत गहरा बंधन है आत्मा के ऊपर इस सब का, 24 तत्वों का। और इसके ऊपर फिर हम और बंधन बांधते हैं, जैसे कि जब विवाह होता है तब भी वो बंधन बांधा जाता है ना, वो दुपट्टा और वो क्या वो उसको बांधते हैं। एक कोई सीरियल का एडवर्टाइजमेंट बंबई में लगा हुआ था, ये बंधन ना टूटे हमारा, अरे बहुत मुश्किल है पहले से सारे बंधन और तोड़ना, ऊपर से हम और गांठ मार मार कर बंधन बढ़ा रहे हैं इस संसार का, और फिर कहते हैं बंधन टूटे ना, प्यार का बंधन। तो सोचिए कि जो असली प्रेम है, हां प्रेम का बंधन सबसे गहरा बंधन बताया गया है, परंतु जो असली प्रेम वो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। और सोचिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा द्वारा दिखाया गया प्रेम इस उकल बंधन के रूप में, तो इस भौतिक संसार के किसी बंधन से उस बंधन की तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि यदि कोई एक व्यक्ति बंधा हुआ है, मानो किसी खंभे से बंधा हुआ है, और उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का उद्धार करना है, कोई दूसरा बंधे हुए व्यक्ति को, तो सबसे पहले तो इसे अपने बंधन से मुक्त होना होगा, है ना, तब जाकर दूसरे का बंधन खोल पाएगा। अब मानो ये जो व्यक्ति खंभे से बंधा हुआ है, ये एक पतले धागे से बंधा हुआ है, ये जो रील का धागा होता है, एक केवल एक सूत्र, वो पतले से सूत्र से बंधा हुआ है, तो उसके लिए क्या मुश्किल है उस बंधन को तोड़कर दूसरे का बंधन खोलना। अब मान लो कि उसके बदले सूतली से बांधा गया है उसे, वो थोड़ी और मोटी होती है, या डोरी, उससे और मोटी डोरी, डोरी से मोटी सूतली, या बहुत मोटी रस्सी, कई बार ये हाथियों को बांधी जाती है, बड़ी बड़ी रस्सियां, इतनी मोटी मोटी रस्सियां होती, और कहां, हाँ जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए बहुत मोटी मोटी रस्सियां, बहुत सावधान होना चाहिए वहां पे। खैर सावधान नहीं भी हुए तो वहां पर कुछ भी हो गया तो सदगति है, बिना भगवान के आए नल कोर मणिग्रीव लीला हो जाएगी रस्सी के साथ। तो मानो किसी को इतनी मोटी रस्सी से बांधा गया है और फिर उसे कहे कि यहां से मुक्त होकर जाओ और इसे खोलो, नहीं। तो यदि सभी बंधनों की रस्सी को हम लें तो अब जो भगवान श्री दामोदर जिस बंधन से बंधे हुए हैं, इससे मोटा गहरा कष्टा बंधन नहीं हो सकता। ये कोई पतले से धागे से या डोरी से नहीं बांधे हुए हैं भगवान। प्रेम, शुद्ध कृष्ण प्रेम, माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम से भगवान बंधे हुए। इसलिए भगवान बाहर निकलकर उद्धार नहीं किए इन दोनों का, नहीं कर पाते थे। इसलिए भगवान ने जो प्रेम की डोरी से इन्हें बांधा गया उखल से, उसी का इस्तेमाल कर इनका उद्धार किया। उखल ने उद्धार किया, भगवान ने नहीं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान तो स्पर्श भी नहीं किए दोनों वृक्ष को, क्योंकि इतने गहरे बंधन से बंधे हुए भगवान कहां जा सकते थे। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये जो उखल है इसे इस्तेमाल करता हूं। और एक मुद्दा हमें यह समझ में आता है कि नलकुवर और मणिग्रीव को रेकमेंड किया नारद मुनि ने। यहां पर समझ में आता है कि पावर ऑफ डिवोटी रेकमेंडेशन, कि जब कोई दूसरा भक्त हमारे लिए भगवान के सामने प्रस्ताव रखता है, चाहे हम कितने भी गए गुजरे हों, परंतु यदि कोई दूसरा भक्त हमारे बारे में भगवान से कुछ अच्छा बोल दे, इसलिए श्रीमती राधा रानी के विषय में कहा गया है कि कोई गए से गए गुजरा व्यक्ति भी श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर लेगा। और यदि श्रीमती राधा रानी ने भगवान से कह दिया ले लो इसे, तो भगवान इतनी सी भी आवाज नहीं उठा सकते कि राधे तुम जानती हो इसने क्या क्या कुकर्म किए हैं। भगवान उस व्यक्ति की तरफ उन नजरों से भी नहीं देखते, क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने रेकमेंड कर दिया, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना। कई बार घरों में भी होता है ना, पत्नी बोलती है आज ये सब्जी बनेगी, आज आलू ही बनने वाला है, रोज बनाओ, आज क्यों, कल भी बनाओ, परसों बनाओ, साल भर आलू ही आलू बनाओ। तो कोई आवाज नहीं निकलती। तो यहां पर नलकुवर और मणिग्रीव का सौभाग्य है कि नारद मुनि जैसे भक्त का रिकमेंडेशन था। नारद मुनि ने कह दिया वासुदेव सानिध्य, तो अब वासुदेव जी वो पीछे नहीं हट सकते थे। तो ये एक कारण। तो अब भगवान बंधे हुए उखल को घसीटना प्रारंभ करने वाले हैं, और उखल को वो किस प्रकार से घसीटे इसके पीछे भी काफी सारे मुद्दे हैं, और हमारे आचार्य इसके विषय में क्या बता रहे हैं। तो भगवान अब उखल को घसीटना शुरू करेंगे कल। तो हमने प्रयास तो बहुत किया आज इनको खोलने का कथा के द्वारा, परंतु शायद भगवान की इच्छा है कि हम एक और दिन श्री दामोदर अष्टकम गा सकें। भगवान अब तक बंधे हुए हैं और कल से भगवान अब आगे बढ़ना शुरू करेंगे नलकुवर और मणिग्रीव का। अब केवल मन से नहीं बल्कि जाकर हर दृष्टिकोण से इनका उद्धार करने के लिए। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, शिल प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदी। तो आज शायद भगवान सपने में नहीं आएंगे, परंतु कुछ बोल नहीं सकते, बीच में एक बच गया था।